नवा भाग, अंतश्चेतना और नव मानवता। पॉइंट नंबर वन, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह स्थूल से चलकर सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। पंत जी एक समय भूखे नंगे भारतीयों को देखकर क्षुब्ध हुए थे और उन्हें समाज में यथोचित स्थान दिलाने के लिए उन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्रांति का आह्वान किया था। भारत स्वतंत्र होने के पहले यहाँ के बुद्धिजीवी और राजनीतिक नेताओं का विश्वास था कि देश के स्वाधीन होने पर समाज का ऐसा संगठन किया जाएगा जिससे लोगों के बीच की खाई पाट कर स्वस्थ और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। गांधी जी के स्वराज्य का वही स्वप्न था जिससे हमारा आलोक्य कवि भी बहुत प्रभावित हुआ, किंतु स्वतंत्रता मिलने के बाद लोगों का वहाँ स्वप्न भंग प्रतीत हुआ। कवि ने महसूस किया कि केवल बाह्य समानता तथा समृद्धि से मनुष्य जात को सुख शांति नहीं मिल सकती। उसने अतिमा की आह धरती कितना देती शीर्षक कविता में धरती में निगूढ़ अपार धन धान्य की रहस्य उद्घाटित किया है और धन संचय को गर्हित बताया है। साथ ही साथ इस कविता में सच्ची ममता और मानव प्रेम का बीज बोने और उसे पुष्पित पल्लवित करने का संदेश भी दिया है, जिसके अभाव में धरती की अपार संपदा भी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती। उपर्युक्त कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि अंतश्चेतना की ओर उन्मुख होता हुआ दिख पड़ता है, जिसके कारण कवि का यह निष्कर्ष प्रतीत होता है कि केवल बहिर्मुखी वृत्ति से मनुष्य का वास्तविक कल्याण संभव नहीं है। पॉइंट नंबर टू, पंत जी अपनी विचारधारा में आरंभ से ही समन्वयवादी रहे हैं। उनके युग में पश्चिमी जगत में भौमिकता की लहर उठी थी और भारत अपने भविष्य के लिए पश्चिम की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। कवि प्रारंभ में पश्चिम की भौतिक उपलब्धियों से प्रभावित था, किंतु अंततः उनकी एकांगिता का बोध उसे शीघ्र हो गया। भारतीय धर्म और दर्शन की अपूर्णता से भी वह परिचित था। आधुनिक कवि भाग एक की भूमिका में वह लिखता है, मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दर्शनों के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ हूँ, पर भारतीय दर्शन की सामंतकालीन परिस्थितियों के कारण जो एकांत परिणत व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है, दृश्य जगत एवं ऐहिक जीवन को माया होने के कारण उसके प्रति विराग आदि की भावना जिसके उपसंहार मात्र हैं, और मार्क्स के दर्शन की पूंजीवादी परिस्थितियों के कारण जो वर्ग युद्ध और रक्त क्रांति में परिणत हुई है, ये दोनों परिणाम मुझे सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी नहीं जान पड़ते। पॉइंट नंबर थ्री, पंत जी के जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब वे मार्क्स से उद्भूत प्रगतिवाद से निराश हो जाते हैं। उनके समक्ष गांधीवाद भी विफल होता हुआ दिखाई पड़ा। इसी समय वे श्री अरविंद के अंतश्चेतनावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। कवि की 1967 के बाद की रचनाओं में इस दर्शन से प्रभावित नव मानवतावादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। कवि ने नूतन मानवता का आह्वान मानव चेतना के उर्ध्वीकरण के रूप में किया है। इसका प्रारंभिक आभास उसकी कविता अमिता के संदेश शीर्षक कविता में होता है। यह कविता वस्तुतः कवि की सोच और अनुभूति में रूपांतरण उपस्थित करती है। कविता का प्रारंभ आधुनिक यांत्रिक युग की विनाशकारी प्रवृत्ति व्यर्थता बोध की अनुभूति से होता है। वर्तमान युग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भौतिक उन्नति के शीर्ष पर पहुंचने पर भी मनुष्य शांत और प्रसन्न नहीं है। निराशा, कुंठा, अकेलापन, निरुद्देश्यता और व्यर्थता बोध उसके जीवन रूपी वृक्ष को शुष्क बनाते जा रहे हैं। मनुष्य स्वयं अपने लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मैं सोच रहा था जाने क्या हो गया मुझे, मन किन अनजाई डगरों में है भटक गया, कितने अंधियारे कोने में मानव मन के, कुछ किए नहीं बनता दिन यों ही बीत रहे, पान सी बहती आयु कभी क्या लौटेगी, इस निरुद्देश जीवन से क्या किसको लाभ भला, भूभार बने रहने से तो मरना अच्छा। उपर्युक्त कविता की अंतिम पंक्ति में आत्मपीड़न की ध्वनि निकलती है। आत्मपीड़न के चरम रूप में आत्महत्या आधुनिक जीवन में सामान्य बात हो गई है, जिसे हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। यहीं से कवि अंतश्चेतना की ओर मुड़ता है। यह अंतश्चेतना दिव्य और सर्वत्र व्याप्त है। यह सृष्टि की नियामक और मूल सत्ता है। इसको जागृत करने पर ही नव मानवता की प्रतिष्ठा संभव है। इसके लिए मनुष्य को अंतर्मुखता द्वारा पहले अपनी क्षुद्र चेतना का कवच तोड़ना होगा, तब इस महचेतना की विभूति से उसे परिचय होगा, से उसका परिचय होगा। वीणा, कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायतन में कवि ने अंतश्चेतना के आलोक में भावी स्वर्णिम मानवता के चित्र अंकित किए हैं। यहाँ कवि साधारण मनुष्य नहीं अपितु आर्य पुरुष के रूप में उपस्थित हुआ है, जो अपनी ओजस्वी वाणी से पराजित और हताश मानव जात का पथ प्रदर्शन कर रहा है। कवि की आर्ष कविता का एक उदाहरण है। मैं कृतज्ञ मन अंधकार को टोह अनुक्षण, तुम प्रकाश अंगुलि बन करते पथ निर्देशन, भाव बुद्धि प्रेरणा बह श्रेणिया पार कर, तुम तन्मय हो बनते शाश्वत मुख के दर्पण। वाणी से पॉइंट नंबर 4। श्री अरविंद ने अपने ग्रंथ दिव्य जीवन में बताया है कि मनुष्य की आत्यंतिक सुख शांति के लिए आध्यात्मिक ऊर्ध्वकरण के साथ साथ दैहिक रूपांतरण भी आवश्यक है। मनुष्य साधना के द्वारा आत्मिक स्तर पर उठ जाता है, किंतु उसकी देह आहार निद्रा भय और मैथुन में अनुलिप्त रहती है। इसीलिए पंत जी उस महाशक्ति का आह्वान करते हैं जो मनुष्य के पाप भाव की उद्भाविक द्वैत बुद्धि को समाप्त कर देती है। पाप पुण्य में दिखा कहीं भी भेद नहीं, बस महाशक्ति का मुक्त प्रसार अपरिमित। पॉइंट नंबर 5। अभी तक मनुष्य का आध्यात्म धार्मिक रूढ़ियों, आचार विचार, पवित्रतावाद और शुष्क चिंतन तक सीमित था, जिससे मनुष्य वास्तविक जीवन और उससे उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति से वंचित रहता था। नव मानवता में समर्पण भक्ति विवशता या दैन्यवश नहीं, बल्कि श्रद्धा द्वारा प्रेरित होगा। श्रेय प्रेम और व्यक्ति समाज का अंतर्द्वंद समाप्त हो जाएगा तथा मानव जाति शुद्ध आनंद की अनुभूति से परिपूर्ण हो जाएगी। कवि का कथन है, ऐसा नहीं कि मैं प्रकाश ही का प्रेमी हूँ, मुझे चाहिए भाव प्रेम रस श्रद्धा पूर्ण समर्पण। श्रेय प्रेय हो, व्यक्ति धर्म हो, लोक कर्म हो, सबसे ऊपर ओतप्रोत हो रस अंतर, तन्मय प्राणों में हो प्रीति अकारण। वीणा से पॉइंट नंबर 6। इस प्रकार कवि ने अंतश्चेतना का उन्मूलन और नव मानवतावाद की प्रतिष्ठा की है। इसके पृष्ठभूमि में कवि का भारतीय आध्यात्म चिंतन तथा पाश्चात्य विचारधारा का अध्ययन कर रहा है। सदा नीरा कविता में कवि ने चतुर्दिक अजस्त्र भाव से बहने वाली नदी की कल्पना की है। यह सदा नीरा भारतीय आत्म तत्व का रूपांतरण है, जो उपाधियों से भरे पड़े हैं और हमारा सर्वस्व है। लोकायतन में कवि ने वैयक्तिक आध्यात्म का निराकरण करके सामाजिक आध्यात्म की प्रतिष्ठा का आह्वान किया है। इस लोक महाकाव्य में पंत जी ने मनुष्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों की समीक्षात्मक सारांश प्रस्तुत करते हुए भावी मानवता के लिए समन्वयात्मक पथ प्रशस्त करके आर्ष कल्पना को गतिशील बनाया है। कवि की दृष्टि में आत्मभाव को प्रशस्त और सर्वांग पूर्ण बनाने के लिए वस्तु दृष्टि की कम आवश्यकता नहीं है। जीवन के प्रति घोर अंतर्मुखता कभी कभी संस्कृति के तन का प्रबल कारण बन जाती है। कला के लिए कला की ऐसी गंभीर और सर्वांग पूर्ण साधना करनी है, इससे सृष्टि सदा सदा के लिए प्रेम और शुभत्व से भर जाए। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।